स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 22 फरवरी और दिन सोमवार। जाटों को आरक्षण देने का भरोसा दिलाने के बाद उनके रुख में दिखी नरमी।
भी ये है कि हम विश्वास तो सरकार पे कर रहे हैं और सरकार अगर धोखा देगी तो दोबारा हम साथ में, ये भी है कि आंदोलन के लिए भी खड़े होने में जाट समाज को कोई परेशानी नहीं।
देशद्रोह के आरोप झेल रहे जेएनयू के छात्र कैंपस में सामने आए। जयपुर में आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी पर एक खास रिपोर्ट।
70,000 से ज्यादा कुत्तों का नसबंदी हो चुकी है और वैक्सीनेशन तो हर दिन होता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जयपुर सिटी के अंदर।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। केंद्र सरकार ने जाटों को आरक्षण देने के मुद्दे पर एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे। समिति जाटों को संवैधानिक दायरे में आरक्षण देने के मामले में फैसला लेगी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीबीसी संवाददाता को बताया कि इस कमेटी के गठन के साथ ही जाट आंदोलन औपचारिक तौर पर खत्म हो गया है। हालांकि आंदोलन के दौरान कल भी 6 और लोगों के मारे जाने की खबर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कहा कि जेएनयू विवाद ने उन्हें मुसलमान होने का एहसास दिला दिया है। उमर खालिद और उनके साथी कल देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे और उमर खालिद ने छात्रों को संबोधित किया। खबर है कि ये छात्र पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि उमर खालिद ने भारत विरोधी नारे लगाने की बात से बिल्कुल इनकार किया है। आज दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के सामने मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाली नेता सोनी सोरी पर हुए हमले पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही उन पर किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला हुआ था। सोनी सोरी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस हमले की निंदा की है। हंगरी के अधिकारियों ने सर्बिया से लगी अपनी सीमा पर प्रवासियों का प्रवाह रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पुलिस और सेना के जवान इस 4 मीटर ऊंची कटीले तारों की बाड़ के पास लगातार गश्त लगा रहे हैं। इससे पहले हंगरी के अधिकारियों ने कहा था कि इसी महीने 1200 से ज्यादा प्रवासी इस बाड़ को तोड़कर हंगरी में दाखिल हुए हैं। हंगरी के गृह मंत्री सैंडर पिंटर ने कहा कि इस घुसपैठ को रोकना जरूरी है। हाल ही में ऑस्ट्रिया की सरकार ने प्रवासियों की संख्या को सीमित करने की घोषणा की है। इससे हमारे लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। हमें इस बात के लिए तैयार रहना जरूरी है कि ऑस्ट्रिया की सीमा के बंद हो जाने के बाद हमें अपनी सीमा की हिफाजत करनी होगी। ये थे सैंडर पिंटर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में अभियान चलाएंगे। बोरिस जॉनसन एक प्रभावशाली और लोकप्रिय राजनेता हैं। उनके इस फैसले से प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की कोशिशों को धक्का पहुंचेगा। कैमरन लगातार अपनी कंजर्वेटिव पार्टी से अपील कर रहे हैं कि वो जून में हो रहे जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहने का समर्थन करे। बोरिस जॉनसन की दलील है कि यूरोपीय संघ लगातार सीमा नियंत्रण और रोजगार जैसे मुद्दों पर ब्रिटेन की संप्रभुता को कमजोर कर रहा है। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो ऊबर टैक्सी कंपनी में चालक था। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 22 तारीख और दिन सोमवार और इस वक्त हो चले हैं 6:33:44। कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से। केंद्र सरकार ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाट समुदाय की समस्याओं का हल निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल इसका ऐलान किया, लेकिन इससे पहले कल भी हरियाणा के कई ज़िलों में हिंसा की घटनाएं हुई, कई लोगों की जानें गईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग सड़कों पर नजर आए। हालांकि गृहमंत्री के ऐलान के बाद आंदोलनकारियों के तेवर में कुछ नरमी ज़रूर देखी जा रही है। सुनिए एक रिपोर्ट वात्सल्य राय की।
करीब 8 दिन से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जाट समुदाय की मांग पर विचार के लिए कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के मंत्रियों के अलावा जाट नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने इस मामले के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी।
ये अभी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू हैं, और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें।
इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बिल लाकर जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर जैन ने बताया,
ये तय हुआ है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा, सरकार जाट आरक्षण देगी।
उधर दिल्ली में हुई मीटिंग के पहले हरियाणा के कई शहरों में कल भी तनाव की स्थिति बनी रही। आंदोलनकारी सड़कों पर जमे रहे, रेल यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि केंद्र सरकार के ऐलान के बाद जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाट समुदाय एक बार फिर सरकार पर विश्वास करने को तैयार है। मलिक ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और उन्हें 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। मलिक ने बताया,
सरकार पे विश्वास ही करना जरूरी होता है। इस आंदोलन में पिछले 11 साल में हमने सरकार पे कई बार विश्वास किया, कई बार सरकारों ने धोखा दिया, और हम अब भी ये है कि हम विश्वास तो सरकार पे कर रहे हैं, और सरकार अगर धोखा देगी तो दोबारा हम साथ में, ये भी है कि आंदोलन के लिए भी खड़े होने में जाट समाज को कोई परेशानी नहीं।
जाट नेताओं की तरफ से अभी आंदोलन वापसी का औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों के तेवर नरम पड़ने की खबरें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से अवरोध हटा लिया गया है, सोनीपत और पानीपत में भी सड़क पर लगा जाम हटा लिया गया है, लेकिन रेल मार्ग सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद जाट समुदाय का आंदोलन को लेकर क्या रुख है, इसके बारे में भी स्थिति आज ही साफ हो पाएगी।
तो स्थिति आज ही साफ हो पाएगी कि आगे क्या होगा, तो यही जानने के लिए सीधे चलते हैं चंडीगढ़, जहां टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मेरे साथ पत्रकार संजय शर्मा। संजय, क्या जमीन पर हालात बेहतर होते दिख रहे हैं?
जी ऐसा काफी कल शाम को ये इम्प्रेशन दिया गया कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी अभी आपने जैसे बताया सोनीपत में, मेरी अभी सुबह सुबह पुलिस से बात हुई तो पता लगा कि सोनीपत ने फिर से जाम लगा दिया है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि रोहतक में, खासतौर से रोहतक में ना इंटरनेट चलता है, ना लोग टीवी देख पा रहे हैं, ना अखबार मिल रहे हैं, ना सड़कें खुल पाई हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप होने से लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोई दिल्ली में समझौते जैसी बात हुई है। तो अभी भी लोग लूटपाट और अपनी वो जो घटनाएं हैं वो अभी चलती जा रही हैं। तो मुझे लगता है अभी इसमें टाइम लगेगा लोगों तक ये बात सीधी सीधी पहुंचे, और खासतौर से जो नेता हैं ये लोग जो समझौता करके आए हैं, वो उनकी कोई ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों पे पकड़ नहीं है। तो ये हमें समझना, आज शायद इस बात का हमें अनुमान लगेगा कि कितनी लोगों तक ये खबर पहुंचती है और कितना इस बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये वही समझौता है जो पहले भी इसी रूपरेखा को दिया गया था और जिसको रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने।
और क्या ट्रेनें दोबारा चलनी शुरू हो पाई हैं?
नहीं जी, अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है, और बस एक ट्रेन का है कि जम्मू में लोग फंसे थे, उनको लिए सहारनपुर होकर ट्रेन ले जाने की बात है, लेकिन अब सुनने में आया कि अगर आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी फैलता है तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा
जी। तो आपको फिर क्या लगता है कि आप समझौते की बात वो कर रहे हैं, बहुत सारे जाट नेता और केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, तो जमीन पर क्या ये आंदोलन पूरी तरह नेतृत्वहीन हो चुका है?
ये नेतृत्वहीन आंदोलन तो साफ नजर ही आ रहा है, क्योंकि इसमें कई स्टेजेस होती हैं। बहुत बाद में गुंडा एलिमेंट्स ने भी उसको काबू में कर लिया, पहले छात्रों ने, उसके बाद कुछ और नए तरह के लोग आ गए जिनका सारी दिलचस्पी आगजनी और लूटपाट में रही। लेकिन एक और बात ये भी है कि जैसे जो कल राजनाथ सिंह जी से मीटिंग हुई उसकी जानकारी पूरी तरह नहीं आई है, सिर्फ ये कह देना कि आरक्षण दिया जा सकता है, इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगी है। कानूनी पेचीदगी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको उस पर स्टे लगा दिया, उस हालत में कानूनी जानकार ये कहते हैं कि कोई कानून लाना मुश्किल है जब तक कि कोर्ट इस मामले को क्लियर नहीं कर देगा। तो ये कुछ जाट नेता ही हमें बता रहे थे अगर ये बात लोगों तक पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कहीं ना लोगों को मनाया जा सके कि सचमुच में आरक्षण आने वाला है।
बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर होने लगी है। पानी की कमी को देखते हुए आज दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने पानी की कमी से निपटने के लिए कई इंतजाम किए हैं। इन्हीं इंतजामों की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से और सबसे पहले पूछा कि दिल्ली के पास फिलहाल कितना पानी है।
दिल्ली के पास अब 60% एरिया में पाइप से सप्लाई करने के लिए पानी खत्म हो चुका है। शाम को हम पानी सप्लाई नहीं कर रहे हैं और सुबह के लिए भी हमारे पास पाइप से सप्लाई करने का 60% एरिया में पानी नहीं है। हम लोगों ने टैंकर्स के अरेंजमेंट किए हैं। सुबह 6:30 तक लगभग 700 अलग अलग पॉइंट्स में टैंकर पानी डिलीवर करेगा और उसके बाद वही टैंकर वापस आएंगे, उन जगहों से पानी लेंगे जहां सप्लाई अभी चल रही है। और कुल मिलाकर शाम तक हम लोग दिल्ली के 200 पॉइंट्स पे टैंकर से पानी डिलीवर करवा पाएंगे। बस यही पानी है हमारे पास।
आपकी मीटिंग हुई रविवार को, उसके बाद आपने हरियाणा से पानी छोड़ने के लिए कहा, क्या उसके बाद कोई रिस्पांस आपको मिला? सोमवार के लिए कोई आश्वासन मिला?
कैनाल के गेट खुलवाने के लिए कहा था, जितना पानी रेगुलर आता है वही पानी छोड़ दे। गृह मंत्री से हमारी बात हुई थी, राजनाथ सिंह जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, अभी दिन में हम लोग सभी से संपर्क में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन डाली है लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन हरियाणा से या केंद्र सरकार की तरफ से हमारे पास पहुंच नहीं पाया है और अभी तक तो वो गेट बंद है, तो दिल्ली में पानी अब नहीं आ रहा है हमारे पास यमुना से।
जी मैं जानना चाहता हूँ इसके लिए फौरी और आपने इंतजाम किए हैं कुछ, उनकी जानकारी भी हम चाहेंगे आपसे।
हम लोगों ने सबसे पहले तो ये इंतजाम किया है कि हम लोगों ने अपने रात को 15 नए टैंकर फिलिंग पॉइंट्स हम लोग नए इरेक्ट करने जा रहे हैं जहाँ से पानी भरा जाएगा। जितना भी हमारा रिजर्व वाटर होता था हर यूजीआर में, उस सबको हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और टैंकर्स हम लोग अपने सारे जो पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली से जो टैंकर चलते थे उन इलाकों के टैंकर को भी हमने जहां पानी अब नहीं आ रहा है वहां पर डाइवर्ट कर दिया है। पानी की हमने राशनिंग शुरू कर दी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, फायर और हॉस्पिटल और आर्मी, इनको छोड़कर बाकी सब लोगों के बीच में पानी बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने लिए हैं। स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली के सारे।
जी केवल एक दिन का फैसला है कि सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे या आगे भी ये है?
अगर कैनाल के गेट नहीं खुल पाते हैं तो आगे भी स्थिति मुश्किल होगी, अभी तो केवल एक दिन के लिए फैसला लिया गया है।
ये थे दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हम सबकी नजर।
संत रविदास जयंती पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वे संत रविदास मंदिर जाएंगे और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी पहुंचेंगे। बजट सत्र से एक दिन पहले आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद होंगे। इस बैठक में मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में रखे जाने वाले मुद्दों पर बातचीत होगी। दिल्ली सरकार ने आज सभी स्कूलों को बंद करने और जल आपूर्ति की राशनिंग करने के निर्देश दिए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाली अहम मुनाक नहर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद इस नहर को बंद कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पानी का संकट पैदा हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन संसद के निचले सदन से यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के संबंध पर हुए नए समझौते पर एक बयान जारी करेंगे। लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि वो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में वोट देंगे। इससे प्रधानमंत्री कैमरन की कोशिशों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। निजेर में राष्ट्रपति पद और संसदीय चुनाव के नतीजे आज साफ हो जाएंगे। राष्ट्रपति मोहम्मदू इसोफू को उम्मीद है कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिए जाएंगे, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि चुनावों में धोखाधड़ी की गई है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शाह सलमान से मुलाकात करेंगे। दुनिया भर में आई तेल की कीमतों में कमी ने नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रपति बुहारी के साथ नाइजीरिया के तेल मंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं।
और अब बात JNU विवाद की। दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी JNU में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कहा है कि JNU विवाद ने उन्हें मुसलमान होने का पहली बार एहसास दिला दिया है। देशद्रोह केस का सामना कर रहे उमर खालिद और उनके साथी कल देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे और उमर खालिद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर जमा छात्रों को संबोधित किया। संबोधन में उमर का कहना था कि पिछले 7 साल में मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैं एक मुसलमान हूं। मैंने खुद को कभी भी मुसलमान की तरह पेश नहीं किया, लेकिन पहली बार लगा कि मैं एक मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिनों में लगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये छात्र पुलिस के सामने आज आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इस वक्त पुलिस JNU कैंपस के बाहर मौजूद है, लेकिन वो रात भर पुलिस अंदर नहीं घुसी। उमर खालिद के अलावा रामानागा, अनिर्बन भट्टाचार्य, अनंत प्रकाश नारायण और आशुतोष कुमार भी कैंपस में कल रात मौजूद थे। उमर खालिद ने कहा कि 9 फरवरी के हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत विरोधी नारे नहीं लगाए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अभी तक कोई समन भी नहीं भेजा गया है। इन छात्रों ने संसद हमले के दोषी पाए गए अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की दूसरी बरसी पर 9 फरवरी को JNU परिसर में एक कार्यक्रम को आयोजित किया था। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए थे।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब बात सीरिया की। सीरियाई शहर होम्स और दमिश्क में हुए कई विस्फोटों में कम से कम 140 लोग मारे गए हैं। सरकारी मीडिया और निगरानी संस्थाओं ने इसकी पुष्टि की है। अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने दोनों शहरों में हुए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इससे ठीक पहले अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा था कि रूस सीरिया में लड़ाई खत्म करने के एक अल्पकालिक समझौते के लिए राजी हो गया है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यूरो का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
कल का दिन सीरिया के लिए बहुत दुखदायी साबित हुआ। सीरियाई शहर दमिश्क के दक्षिणी इलाके सैयदा जैनब में कम से कम 4 विस्फोट हुए, जिनमें 83 लोग मारे गए। इससे पहले एक निगरानी संस्था ने बताया कि होम्स में हुए दोहरे कार बम विस्फोट में 57 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। कथित चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन दोनों हमलों में इस्लामिक स्टेट ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को अपना निशाना बनाया। दमिश्क के सैयदा जैनब में शिया मुसलमानों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली जगह स्थित है। होम्स में विस्फोट अलावियों के जिले में हुए। ये इस्लाम का वो पंथ है जिसका पालन राष्ट्रपति बशर अल असद करते हैं। इस्लामिक स्टेट अक्सर होम्स को अपना निशाना बनाता रहा है। इन हमलों के बावजूद अमरीका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि सीरियाई गृहयुद्ध में आंशिक विराम के लिए रूस से एक अस्थायी समझौता हुआ है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जॉर्डन के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा, सीरिया पर उनकी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात हुई है और वो सीरिया पर एक अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। जॉन केरी कह रहे हैं, मेरा मानना है कि जो भी बातचीत हमारे बीच हुई उसमें हमारे बीच सैद्धांतिक तौर पर सीरिया में संघर्ष खत्म करने का एक अस्थायी समझौता हुआ है। युद्ध विराम की इन शर्तों पर अगले हफ्ते काम शुरू होगा। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रपति आने वाले दिनों में बातचीत करके युद्ध विराम की इन शर्तों को अंतिम रूप देकर उन्हें लागू कर देंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्री केरी ने सीरियाई सरकार से अपील की कि युद्ध से घिरे इलाकों में राहत सामग्री तत्काल पहुंचाए जाने की इजाजत दें।
The Syrian regime has a fundamental humanitarian and global responsibility.
जॉन केरी कह रहे हैं, सीरिया की सरकार का मूल मानवीय और वैश्विक स्तर पर भी कर्तव्य है। इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों का कर्तव्य है कि वो जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने का इंतजाम करें। फरवरी की शुरुआत में सीरिया में चल रहे संघर्ष में शामिल दुनिया के ताकतवर देशों में ये सहमति बनी थी कि वो इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन पिछले शुक्रवार तक निश्चित की गई समय सीमा गुजर चुकी है और इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं किया गया है।
तो सीरिया में हुए विस्फोट में कम से कम 140 लोग मारे गए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का और मेरी सहयोगी प्रगति सक्सेना तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी प्रगति बताएं।
जी इकबाल, आज सारे अखबारों में एक तो हरियाणा में जो जाट आरक्षण आंदोलन है उसके बारे में खबरें हैं, तमाम तरह की खबरें हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके पढ़ देती हूँ। जनसत्ता में जैसे जाट आरक्षण आंदोलन के बारे में है कि जाटों के आगे झुकी सरकार, पानी के लिए हाहाकार, आज बंद रहेंगे स्कूल। उधर नई दुनिया में लिखा है कि हिंसा से निपटने के लिए सेना को मिलेगी खुली छूट आरक्षण में हरियाणा में। और दैनिक जागरण में है कि आरक्षण पर सरकार तैयार, पानी के लिए तरसी दिल्ली। नवभारत टाइम्स में है आरक्षण की आग शांत करने के लिए आगे आए खिलाड़ी, खिलाड़ियों ने अपील की लोगों से कि वो शांति बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें। हिंदुस्तान में है कि दिल्ली में पानी का संकट सोमवार रात तक ख़त्म हो जाएगा। ये भी आरक्षण को लेके खबर है कि जो मुनक नहर से पानी रोका गया है वो सोमवार रात तक यानी आज रात तक ख़त्म हो जाएगा, ये पानी छोड़ दिया जाएगा। अमर उजाला में पूरे पहले पन्ने पर आरक्षण से संबंधित खबरें ही हैं। बलवाइयों के हाथ हरियाणा और दिल्ली NCR में हाहाकार। इसमें बताया गया है कि पश्चिम यूपी तक जो है आरक्षण का ये आंदोलन फैल गया और बहुत सारी करीब 1000 ट्रेनें इससे प्रभावित हुई। दूसरी खबर है जो सभी अखबारों में है कि मेरी सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में बारगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा। फिर एक पंपोर में जो मुठभेड़ हो रही है कश्मीर में वो चरमपंथियों और सेना के बीच, उसमें एक कैप्टन मारे गए हैं जिनका अंतिम संदेश है, नई दुनिया में खबर है कि किसी को आरक्षण चाहिए, किसी को आज़ादी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी रजाई। ये काफ़ी हृदयस्पर्शी संदेश है इनका कि इन्हें सिर्फ आराम चाहिए, इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। JNU के मामले में राष्ट्र द्रोही गतिविधियों का विरोध करने के लिए दिल्ली में पूर्व सैनिकों का एक एकता मार्च निकाला गया।
जी
वो नई दुनिया में खबर है और दैनिक जागरण में भी इसकी खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश में बवाल हुआ अंबेडकर विचार मंच की एक संगोष्ठी में, ये नई दुनिया में खबर है। प्रोफेसर विवेक कुमार के भाषण के दौरान काफ़ी मारपीट भी हुई और गोलियाँ भी चली, ये नई दुनिया की खबर में पढ़ रही थी। दैनिक जागरण में एक बहुत दिलचस्प खबर है कि यात्रियों के लिए अब होगा पैसा फेंक तमाशा देख, यानी एयर होस्टेस की तर्ज पर ट्रेन होस्टेस की सुविधा मिलने की भी संभावना है अब की बार नए रेल बजट में। नवभारत टाइम्स में खबर है कि आरोपी छात्र जिनकी तलाश थी पुलिस को, वो JNU में देखे गए हैं, जैसा कि आपने अभी खबरों में बताया। और हिंदुस्तान में है कि उमर खालिद को लेके JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 40 शिक्षकों से सवाल जवाब किया है पुलिस ने।
बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक ख़ास रिपोर्ट आवारा कुत्तों से जुड़ी। देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों से निपटना एक बड़ी समस्या है। कोच्ची की एक संस्था ने तो आक्रामक आवारा कुत्तों को मारने वाले के लिए 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन जयपुर में हेल्प इन सफरिंग संस्था ने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के जरिए इस समस्या पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता पाई है। बीते 17 साल से चल रही इस मुहिम से शहर में आवारा कुत्तों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, साथ ही रेबीज़ के मरीजों की संख्या में भी करीब 95% कमी आई है, ऐसा दावा है इस संस्था का। सुनिए जयपुर से आभा शर्मा की ये खास रिपोर्ट।
वर्ष 1994 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह माना था कि कुत्तों को मारना, रेबीज पर नियंत्रण अथवा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में कमी लाने का हल नहीं है। इन दिशा निर्देशों पर व्यवहारिक रूप से काम शुरू हुआ जयपुर में। एक पशु कल्याण संस्था हेल्प इन सफरिंग ने जीव दया के आधार पर इस दिशा में काम शुरू किया। इस अभियान में मुख्य भूमिका रही इंग्लैंड से जयपुर आए डॉक्टर जैक रीस की। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हेल्प इन सफरिंग संस्था वैज्ञानिक तरीके से आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करती है।
Key feature, the key difference between the Help in Suffering animal birth control program and that elsewhere was the level of monitoring of the effects.
हेल्प इन सफरिंग और जनसंख्या नियंत्रण के दूसरे कार्यक्रमों में मुख्य अंतर तथ्यों की निगरानी के स्तर और रिकॉर्ड के रख रखाव का है। शुरुआत से ही कार्यक्रम के प्रभाव को लेकर डाटा इकट्ठा करने की वजह से हम वैज्ञानिक तौर पर बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम प्रभावी है।
संस्था की मैनेजिंग ट्रस्टी टिमी कुमार ने बताया कि उनका जोर इस बात पर है कि जानवरों को तकलीफ ना हो और इंसान भी सुरक्षित रहें।
17 साल हो गए, 70,000 से ज्यादा कुत्तों क्या नसबंदी हो चुकी है और वैक्सीनेशन तो हर दिन होता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जयपुर सिटी के अंदर, आई वुड से 95% देयर हैज बीन नो केस ऑफ रेबीज और डॉग बॉयज। और यही काम से जर्नल्स लिखी गई हैं विदेश में। इतना सिस्टमैटिक हमारा डॉक्यूमेंटेशन है कि कई रिसर्चर्स आके जैक के साथ काम करते हैं हमारे हेल्पर, और बहुत रिकग्निशन इंटरनेशनली मिला।
भारत में आवारा कुत्तों के आतंक की समस्या काफी बड़ी है और डॉक्टर जैक के मुताबिक इसका संबंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी है, लेकिन डॉक्टर जैक कहते हैं कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते।
This is essentially a problem of solid waste management in urban areas. That is something about which I can't do anything.
ये शहरी इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या से जुड़ा है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हेल्प इन सफरिंग इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये साफ तौर पर समझने वाली बात है कि अगर आप शहरी इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो आवारा कुत्तों की संख्या में कमी आएगी।
टिमी कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड से उन्हें कुछ वर्षों से नियमित आर्थिक सहयोग मिल रहा है। यदि राज्य सरकार से भी इस दिशा में मदद मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग कुत्तों की नसबंदी पर सवाल उठाते हैं, पर ऐसा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी जरूरी है।
कोई लोग बिलीव करते हैं कि कुत्तों को क्यों नसबंदी किया जाए, ये सो दैट एक्सीडेंट्स ना हो। अगर डॉग पॉपुलेशन कम रहेगी तो रास्ते में भागेंगे नहीं कुत्ते और बच्चे नहीं भागेंगे, और कई बार अच्छे इंसान कुत्ते को बचाने के चक्कर में अपने आप का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जरूरी है कि इनको भी जीने दें और हम लोग भी सेफ्टी से जिए।
जयपुर नगर निगम में कार्यरत डॉक्टर हिरेंद्र से भी बीबीसी ने उनके प्रयासों के बारे में पूछा।
हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या ये गलत नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोई भी डॉग है स्ट्रे डॉग को आप पकड़ोगे, उसके बाद में इसका कास्टेशन करोगे, और कास्टेशन करने के बाद में इनके एंटी रेबीज वैक्सीन लगाकर इनको जहाँ से उठाया है वहीं वापस छोड़ोगे। इस पे नगर निगम काम कर रहा है। हमारे पास पूरे इतने संसाधन नहीं है कि हम इनकी सर्वे कर सकते। कुत्तों किस तरीके से काउंटिंग करेंगे, उनको काउंट कर रहे हैं कि जो लेके आ रहे हैं और लेने के बाद में उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उन ऑपरेशन वालों को काउंट कर रहे हैं।
जयपुर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों पर काम करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि कुत्तों को मारने के बजाय उनकी नसबंदी और टीकाकरण अधिक कारगर उपाय है, जो अधिक वैज्ञानिक भी है और मानवीय भी। जयपुर से आभा शर्मा।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्र सरकार ने जाटों को आरक्षण देने के मुद्दे पर एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित भारत विरोधी नारे लगाने के मामले में देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे उमर खालिद ने कहा कि JNU विवाद ने उन्हें मुसलमान होने का एहसास दिला दिया है। आज दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन के सामने मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाली नेता सोनी सोरी पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। हंगरी के अधिकारियों ने सर्बिया से लगी अपनी सीमा पर प्रवासियों का प्रवाह रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम और सख्त कर दिए हैं। लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि वो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में अभियान चलाएंगे। अमेरिका के मिशिगन में गोलीबारी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो ऊबर टैक्सी कंपनी में चालक था। बंदूक से हमला करने की इस वारदात में 6 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।